शाम का वक्त, डाइनिंग हॉल एक बार फिर सजा हुआ था। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन रखे थे, गरम गरम रोटियां, खुशबूदार सब्जी, दाल, सलाद। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे, अविनाश, सुप्रिया, सुजीत, नंदिनी, और थोड़ी दूरी पर सुषमा देवी भी अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठी थीं। उनकी नज़रें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे उन्हें पहले से अंदाज़ा हो कि आज भी कुछ अलग नहीं होने वाला। नंदिनी ने प्लेटें लगानी शुरू की। सबके सामने खाना परोसा जा रहा था, लेकिन जब वो सुषमा देवी के पास पहुंची, तो उसने सिर्फ एक रोटी रखी और थोड़ा सा दाल। रोटी भी सूखी, उस पर घी की एक बूंद तक नहीं। ये देखकर धानी और वरुण दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में साफ हैरानी थी। धानी खुद को रोक नहीं पाई। चाची, ये क्या है? उसने सीधा सवाल किया। सबकी नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। दादी को सिर्फ एक रोटी, वो भी बिना घी के? उसकी आवाज़ में नाराज़गी साफ थी। नंदिनी थोड़ी चौंकी, फिर तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, अरे बेटा, सासू माँ को आजकल घी हजम नहीं होता, उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। धानी ने प्लेट की तरफ देखा, फिर बोली, तो सब्जी, वो भी नहीं दी? नंदिनी ने हल्का सा हंसकर कहा, सब्जी में मिर्च होती है ना, वो भी हजम नहीं होता। उसकी बात सुनकर धानी का चेहरा सख्त हो गया। और ये दाल, बस इतनी सी? कमरे में माहौल धीरे धीरे भारी होने लगा। तभी सुषमा देवी ने बीच में धीरे से कहा, बच्चों, तुम लोग खाना खाओ, खाने के वक्त ऐसे सवाल नहीं करते। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक छुपा हुआ डर भी था। वो नहीं चाहती थीं कि बात और बढ़े, लेकिन आज धानी और वरुण चुप रहने वाले नहीं थे। वरुण ने अचानक अपनी प्लेट दूर कर दी। मैं नहीं खाऊंगा, उसने साफ शब्दों में कहा। सब चौंक गए। क्यों? सुजीत ने पूछा। वरुण ने सीधा जवाब दिया, जब तक दादी को ठीक से खाना नहीं मिलेगा, मैं भी नहीं खाऊंगा। उसकी आवाज में जिद थी और आंखों में आंसू चमक रहे थे। धानी ने भी तुरंत अपनी प्लेट पीछे कर दी। मैं भी नहीं खाऊंगी, उसने दृढ़ता से कहा। ये गलत है, हमारे सामने दादी के साथ ऐसा नहीं होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अविनाश ने गुस्से में कहा, ये क्या बचपना है, खाना है तो खाओ, नाटक मत करो। लेकिन इस बार बात बच्चों की जिद से आगे बढ़ चुकी थी। वरुण ने सिर हिलाया, नहीं दाऊजी, ये नाटक नहीं है, ये गलत के खिलाफ है। उसके शब्द सीधे दिल में उतर रहे थे। सुप्रिया असहज हो गई। बच्चों, ऐसी बात नहीं करते, दादी की तबीयत? लेकिन धानी ने बीच में ही रोक दिया। माँ, प्लीज ये मत कहिए कि दादी की तबीयत खराब है, हम देख रहे हैं सब। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज मजबूत। नंदिनी अब थोड़ा चिढ़ गई। बहुत हो गया, तुम बच्चों को कुछ पता नहीं होता, बड़ों के बीच में बोलना ठीक नहीं है। लेकिन धानी ने बिना डरे जवाब दिया, गलत चीज के खिलाफ बोलना हमेशा ठीक होता है। कमरे में तनाव चरम पर था। सुषमा देवी बेचैन हो उठी। बस करो बच्चों, उन्होंने विनती की, मुझे सच में भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। लेकिन इस बार कोई मानने को तैयार नहीं था। अचानक धानी उठी, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो सीधे सुप्रिया की प्लेट के पास गई और बिना कुछ बोले उसकी प्लेट उठा ली, फिर सुषमा देवी की प्लेट के साथ बदल दी। सब हैरान रह गए। धानी, ये क्या कर रही हो? सुप्रिया ने कहा, लेकिन धानी ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ, ये अब ठीक है। उसने सुषमा देवी की तरफ देखा, आज के लिए ऐसा ही करते हैं। उसकी आंखों में प्यार था और एक सख्त फैसला भी। वरुण तुरंत मुस्कुरा दिया और बोला, अब मैं खाऊंगा। उसने अपनी प्लेट वापस खींच ली। कमरे में मौजूद बड़े लोग बस एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। उनके पास इस बार कोई जवाब नहीं था। सुषमा देवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, थोड़ी सी राहत के थे। उन्होंने कांपते हाथों से रोटी उठाई और एक छोटा सा कौर लिया। आज कई दिनों बाद उन्हें खाना थोड़ा स्वादिष्ट लगा, क्योंकि उसमें प्यार मिला था। और उसी पल हवेली के माहौल में एक छोटा सा बदलाव आ चुका था, जो शायद आगे चलकर एक बड़े तूफान का कारण बनने वाला था। रात फिर से हवेली पर उतर आई थी, लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग था। सुषमा देवी के कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी और बिस्तर पर धानी और वरुण दोनों उनके पास लेटे हुए थे। धानी ने अपना सिर दादी के कंधे पर टिकाया हुआ था और वरुण उनके हाथ को पकड़े हुए था। दादी, फिर से वो वाली कहानी सुनाओ ना, धानी ने मासूमियत से कहा। सुषमा देवी हल्का सा मुस्कुराई। अरे, तुम लोग अभी भी वही पुरानी कहानियां सुनते हो, बड़े हो गए हो अब, वरुण तुरंत बोला। दादी, बड़े हो गए हैं, लेकिन आपके लिए तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे। उसकी बात सुनकर सुषमा देवी की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उन्होंने धीरे धीरे कहानी शुरू की। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी। उनकी आवाज में अपनापन था और कहीं ना कहीं वो कहानी उनकी अपनी जिंदगी से जुड़ी लग रही थी। धानी आंखें बंद करके सुन रही थी, जैसे हर शब्द अपने दिल में उतार रही हो। वरुण भी चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसकी पकड़ दादी के हाथ पर और मजबूत होती जा रही थी। तभी दरवाजा हल्के से खुला, सुप्रिया अंदर आई। उसने ये दृश्य देखा और कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। धानी, वरुण, उसने आवाज लगाई, चलो अब अपने कमरे में जाओ, सोने का टाइम हो गया है। धानी ने आंखें खोली और बिना उठे ही बोली, माँ हम बच्चे नहीं हैं, सो जाएंगे, हम दादी के साथ ही सोएंगे। उसकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें जिद साफ थी। सुप्रिया थोड़ा आगे बढ़ी, ये क्या बात हुई, अपने अपने कमरे हैं तुम लोगों के, वहीं जाकर सो। फिर उसने बिस्तर की तरफ देखा और बोली, और ये गद्दा कितना पतला है, कमर दर्द हो जाएगी। उसकी आवाज में हल्की चिंता थी लेकिन उसमें एक दूरी भी थी। वरुण तुरंत उठकर बैठ गया और सीधा जवाब दिया, जब दादी सो सकती हैं तो हम भी सो सकते हैं। उसकी आवाज में सादगी थी लेकिन बात सीधी दिल पर लगने वाली। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुप्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। धानी भी अब उठकर बैठ गई और माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ आपको हमारी कमर की चिंता है लेकिन दादी की नहीं? ये सवाल सीधे दिल में उतर गया। सुप्रिया का चेहरा थोड़ा बदल गया लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। सुषमा देवी ने तुरंत माहौल संभालने की कोशिश की, अरे तुम लोग भी ना, उन्होंने हल्के से कहा, जाओ बेटा अपने कमरे में सो जाओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन इस बार दोनों बच्चों ने एक साथ सिर हिला दिया। नहीं, धानी ने धीरे से कहा, आज हम यहीं रहेंगे। वरुण ने भी उनका हाथ पकड़ लिया, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि सुषमा देवी कुछ कह ही नहीं पाई। उनकी आंखों में आंसू आ गईं, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, एक सुकून के थे। सुप्रिया ये सब देख रही थी, उसके चेहरे पर भाव बदल रहे थे, गुस्सा, असहजता और कहीं ना कहीं एक हल्की सी शर्म ही। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीमे से बोली, ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। और वो मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद होते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा सुकून भरा था। धानी फिर से दादी के कंधे पर सिर रखकर लेट गई। दादी, आगे क्या हुआ उस कहानी में, उसने धीमे से पूछा। सुषमा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, फिर धीरे धीरे बोली, फिर उस बूढ़ी औरत के जीवन में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने उसे फिर से जीना सिखा दिया। उनकी नजरें दोनों बच्चों पर टिक गईं। वरुण ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली और धानी ने दादी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। बाहर रात गहरी होती जा रही थी लेकिन इस छोटे से कमरे में आज पहली बार अंधेरे के बीच थोड़ी सी रोशनी लौट आई थी। और सुषमा देवी के दिल में जो खालीपन था वो धीरे धीरे भरने लगा था, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी।